सकते हैं। पहले घूमते रहते हैं किस लिए, ज्ञान है तवा, ज्ञान देने के लिए घूमते रहते हैं। इसलिए तस्मा जीवन ग्राम पसर मम मूढ़ धिया प्रभु अंधे तमस मग्न से ज्ञान दीप उदीर जाता हूं। तो मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि आप दोनों भी उन्हीं में से कोई हैं जिनका मैंने नाम रखा है। आप दोनों भी उन्हीं महान पुरुषों में से हैं जो जगत में ज्ञान प्रदान करने के लिए भ्रमण किया करते हैं। तो आप बताइए दोनों कौन हैं, और ये तो आप जो कुछ भी हो आपकी बातों से प्रकट हो रहा है कि आप महाज्ञानी हैं, परम वैष्णव हैं। तो आप कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीप उदीर जता, आप मेरे लिए ज्ञान का दीपक जलाइए, आप मुझे ज्ञान दीजिए। मैं ग्राम्य पशु हूं, ग्राम्य पशु न मूढ़ धिया प्रभु अंधे तमस मग्न से ज्ञान दीप उदीर जता। मैं एक पशु की तरह और घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिर चुका हूं, विषय भोग के कूप में मैं गिर गया हूं। मेरा उद्धार करने में दोनों आप समर्थ हैं, प्रभु या प्रभु का अर्थ समर्थ, आप दोनों समर्थ हैं, मेरा उद्धार कर सकते हैं, तो कृपया मेरा उद्धार कीजिए। मैं अंधे तमस मग्न से घोर अंधकार के तमोगुण में मग्न हो गया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीपक जलाइए। ज्ञान दीपक जलाने का मतलब ये मत समझिए कोई लाइट वाइट लाएंगे नारद जी, जैसे ज्योति जलाते हैं कहीं किसी चीज के उद्घाटन पर, ऐसे दीपक जला दिया बस ज्ञान हो गए। यहां ज्ञान दीप उदीर्जता का अर्थ है कि कुछ बोलिए, हमें उपदेश दीजिए, प्रवचन कीजिए जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान होता है शब्दों द्वारा, तो कुछ बोलिए, उपदेश कीजिए। महाराज चित्रकेतु जैसी शुद्ध विनीत भावना यदि किसी की होती है तो उसे तत्काल ज्ञान हो जाता है। इतना बड़ा राजा इस तरह से पहले रो रहे थे, तो जब नारद जी अंग्रेज जी आए तो वे उनके बातों को थोड़ा सुने, और सुने तो उनकी जिज्ञासा हो गई। जो आजकल का आदमी अगर इस दशा में हो, कहीं ऑफिस में हो या शोक में हो, ये हो, कोई साधु यदि जाकर के कुछ कहे कि आपको भजन करना चाहिए, करना चाहिए, हाँ ठीक है हमारा कुछ और काम है, आप जा सकते हैं, अभी टाइम नहीं। कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं हम लोगों से भी, कहते अच्छा स्वामी जी जरा एक बात बताइए, और हमको टाइम नहीं है, दो मिनट में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो इतना पाबंदी डाल देते हैं और उत्तर दे पूछते हैं, दो मिनट तक वो प्रश्न ही करते रह जाते। असली में उनको अपनी बात कुछ कहनी होती, सुनने की इच्छा नहीं रहती। राजा चित्रकेतु को वास्तव में सुनने की इच्छा है। सारा समाज रो रहा था, दरानियां रो रही थी, चाहे भले कपट से रो गए और भी, लेकिन और किसी से बात नहीं करने गए। ये सुनने लगे तो और लोग भी सुनने लगे, राजा सुनने लगे तो वहां पूरा क्लास चालू हुआ, हजारों लाखों, अरे दस लाख तो, दस लाख ना, दस लाख तो स्त्रियां ही थी, हाँ वही एक करोड़ संस्कृत है। तो वे सब सुनने लगे, बच्चा मरा हुआ है, राजा वही लाश के पास बैठे हुए हैं और क्लास चालू हो गए। ज्ञान का जो उपदेश हुआ है ऐसे ही समय में हुआ है, कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया गया भगवान के द्वारा। ऐसी स्थिति थी कि अब आगे लोग मरने वाले थे वहां युद्ध में, और यहां तो मर गया है तो ज्ञान चालू किया जा रहा है। उसी दशा में व्यक्ति सुनता भी है, क्यों लोक में किसी के मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, क्या और समय नहीं सुनाया जा सकता है, लेकिन लोग सुनेंगे ही नहीं, सुना कोई कैसे सकता है। उस समय थोड़ा मन पर आघात होता है, इसलिए गरुड़ पुराण सुनते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसे नरक में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो राजा चित्रकेतु जैसी शुद्ध भावना हो, समर्पण हो, ज्ञान होने में थोड़ी भी देर नहीं हो सकती है। पहली तो इनकी विनीत भावना यह है कि ये कहते हैं कि ग्राम्य पशोर मम, और ऊपर से मूढ़ धिया कह, इस संसार में देखा जाता है पशु को कोई ज्ञान नहीं रहता। कभी कभी पशु कुएं में गिर जाते हैं, खास करके बरसात के दिन में जब रिजेक्टेड कुआं होता है उस पर घास बढ़ जाती है, चारों तरफ से घास बढ़ करके कुएं के द्वार को घेर लेती है, बहुत लंबी लंबी घास होती है, हम लोगों ने देखा है और कुएं में गिरा हुआ पशु भी देखा। तो वो चरने के लोभ से, घास हरी हरी घास को चरने के लोभ से वो निकल जाता है, और पशु तो दूर रहते हैं, किसी किसी को पता होता है कि यह कुआं है, लेकिन जो मूर्ख धिया, जो मूर्ख बुद्धि का आदमी है वो सोचता है यहां सुख है, यहाँ सुख है, ऐसे घर बांधूंगा, ये करूंगा ये करूंगा, ऐसे नौकरी चाकरी ये सब, वो सुख के फेर में जाता है और धड़ाम से गिर जाता है उसमें। तो पैर आगे बढ़ाता है वहां तो घास रहती है, तट रहता नहीं है, और घास चरने गया, चर भी नहीं सका, धड़ाम से गिर जाता। ये दुर्दशा है, कोई सुख मिला नहीं संसार में, और बहुत बड़ा गृहस्थी का भार लेकर के चलने लगता है, जो पहले सुख था वो भी नहीं रहा, चला था सुख के लिए घास चर में, घास भी नहीं मिला, और बाद में रोने लगता है अरे बाप अब क्या करें क्या करेंगे, अब तो कोई नारद जी जैसा आएगा तो निकालेगा, भीतर से निकालेगा, अंग सीधा करेगा, कोई दवाई देगा, तब ठीक होंगे। तब ठीक सब घास का लोभ नहीं करेंगे, अब एकादशी वगैरह करके संतोष करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम लेकिन अपनी स्थिति का इस तरह से खुले हृदय से स्पष्टीकरण करना, यह चित्रकेतु महाराज की विशेषता है। तो मैं ग्राम में पशु हूँ, बिल्कुल बेवकूफ, मैं अपने ही तहत कुछ नहीं जानता, आप हमें उपदेश कीजिए उपदेश कीजिए। तब अंगिरा जी बोलते हैं, नारद जी भी चुप हैं, अंगिरा जी कहते हैं अहम ते पुत्र काम से पुत्र दो अस्म अंगिरा नृप, हे नृप, हे मनुष्यों का पालन करने वाले, यह एक व्यंग था कि आप अपना ही पालन नहीं कर रहे हो, मनुष्यों का क्या पालन करोगे, इस तरह से रो रहे हो। तो हे राजन, हे नृप, अहम अंगिरा अस्मि, मैं अंगिरा हूं। जरा ध्यान से देखिए, कुछ ही दिन पहले मैं आपके यहां आया था, फिर भी नहीं पहचान रहे थे, तो मैं अंगिरा हूं। ते पुत्र कामस्य पुत्र दह अंगिरा, आपको पुत्र की कितनी लालसा थी, तो आप इतने याद कीजिए आपके घर पर कोई साधु आया था, हाँ हाँ आया था, वही मैं अंगिरा हूं। मैं इतना भूल गए थे। ते पुत्र कामस्य अहम पुत्र दह अंगिरा अस्मि, आपको पुत्र मैं दिया था, पुत्र दह मैं पुत्र दिया था, तब तो प्रणाम पहली बार किए होंगे। प्रणाम किए होंगे चाहे और सत्कार, नहीं अभी सुनने के बाद। तो मैं जब आपके घर पर आया था तो आपके पुत्र की बहुत अभिलाषा थी, कामना थी, तो मैं आपको पुत्र दिया था। ये अपना परिचय दे रहे हैं, राजा पहचान नहीं रहे थे इसीलिए परिचय दिए कि आपको पुत्र देने वाला मैं हूं। और ये सब चित्रकेतु जी ने पूछा कि और ये, अरे ये सब ब्रह्म सुतः साक्षात नारदो भगवान ऋषि, आपने नारद जी का नाम सुना है? हाँ, वही साक्षात श्री नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र और भगवान के परम भक्त, ये श्री नारद जी है। अच्छा, नारद जी है, ये अंग्रेजी परिचय दे रहे, ऐसा ब्रह्म सुत साक्षात नारद भगवान ऋषि, देवर्षि नारद साक्षात भगवान, अर्थात भगवान के भक्ति में परिपूर्ण सर्वज्ञ नारद जी आए और अपने आप कहते हैं इत्थम त्वम पुत्र शोकेन मग्नम तमस दुष्करे। हम लोगों ने देखा कि आप पुत्र शोक में महान दुख के दुस्तर समुद्र में मग्न हो गए हैं, पुत्र शोक के कारण दुख में मग्न हो गए हैं, अज्ञान में मग्न हो गए, इस तरह रो रहे थे अतदर है। हम लोगों ने देखा कि आप जैसे व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने सोचा आप जैसे भक्त को इतने छोटे धरातल पर होकर के छोटी छोटी बात को नहीं सोचना चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं। वास्तव में नारद जी जैसे महात्मा सबके यहां जाकर नहीं समझाने लगते, कोई भक्त है, अच्छा आदमी है और हाय हाय कर रहा है बिना मतलब के, तो उसको जाकर समझाते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वही कह रहे अत दरहम अनुस्मृत महापुरुष गोचरम, क्योंकि आप महापुरुष के भक्त हैं, आप श्री विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव। भगवान के भक्त को इतने अज्ञान में नहीं गिरना चाहिए। मरे हुए बच्चे के चरण के पास आप मरे जैसे गिरे हुए हैं राजा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि वैष्णव है, वैष्णव वंश में जन्म लिए हैं, इतने बड़े हैं, इनको ऐसा योग्य नहीं है, अतः अनुग्रहाय भवतः प्राप्त आवामिह प्रभो, हे राजन आप पर कृपा करने के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हुए। ब्रह्मांडो भगवत भक्तो नाव सीधित मरहति, जो भगवत भक्त है, विष्णु का भक्त है और ब्राह्मणों के प्रति प्रेम रखता है, उसको इस तरह दुख में नहीं पड़ना चाहिए। आपका दुख देख करके हम लोग आए हैं, आपका दुख दूर करने के लिए। तब चित्रकेतु महाराज कहते हैं, तो आप कई महीना पहले हमारे घर आए थे, तो उसी समय क्यों नहीं परम ज्ञान दे दिए, इतना रुला करके मार डाले हाय, उसी समय क्यों नहीं परम ज्ञान दे दिए कि अब ज्ञान दे रहे हैं। उस समय भी तो आपको ये सब ज्ञान था ही ना। तब कहते हैं अंग्रेज, तदैव ते परम ज्ञान ददामी गृह में आगत, तदैव उसी समय जब मैं आपके घर आया था तो मेरा उसी समय विचार था कि परम ज्ञानम ददामी, मैं इनको परम ज्ञान दूंगा, इसी यही बात सोच करके मैं आया था। लेकिन मैं देखा ज्ञातवा अन्याभिनिवेशम तो पुत्र मेरा ददऊ, लेकिन आप तो हाय रे बेटा कर रहे थे कि हमको पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, और दुनिया में किसी भी चीज से मैं सुखी नहीं हो सकता, हमको पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, इसलिए पुत्र मेरा ददऊ अहम, इसलिए अहम अपने पुत्र मेरा ददऊ, मैं भी पुत्र ही देकर चला गया। आप उस समय ज्ञान ले नहीं सकते थे। जब मैं आपके यहां आया तो रोने लगे कि हमको पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं, तो आप कहां ज्ञान मांगे, अभी तो ज्ञान मांगे नहीं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज्ञात्वा अन्याभिनिवेशम, आपका अन्य अभिनिवेश देख करके मैं पुत्र ही दिया, और दिया नहीं कुछ भी, ज्ञान नहीं दिया। इसके द्वारा भी एक बात का बहुत रहस्योद्घाटन हो रहा है, ज्ञान लेने की योग्यता क्या है कि अन्य विचारों से मुक्त होना चाहिए उसको। पांच प्रकार की अविद्या है, उसमें अविद्या, अस्मिता और राग द्वेष अभिनिवेश कहते हैं। अभि का अर्थ होता है अभित, नी का अर्थ है नितरान, और विवेश का अर्थ है प्रविष्ट हो जाना। जब हम किसी सांसारिक विचार में बिल्कुल खो जाते हैं, बाहर का कोई ध्यान नहीं रहता है, तो उसको अभिनिवेश कहते हैं। अभिनिवेश, आदमी विचारों में खोया रहता है, हमको ये चाहिए, ये करूंगा, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये पाना है, यह पाना है, इसको अभिनिवेश कहते हैं। तो इस तरह से वो चक्रवर्ती सम्राट अभिनिवेश में था, हमको पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, विचार करता रहता था, ये पुत्र होगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, ये खोया रहता था। तो घर पर कोई महाज्ञानी भी आ रहा है, भक्त भी आ रहा है, तो उसकी योग्यता, उस ज्ञानी की शक्ति से भी वो यही लाभ उठाना चाहते थे कि इनके आशीर्वाद से, इनके कुछ प्रबंध से हमको पुत्र हो जाएगा। तो वो ज्ञान देने आए हैं और वो बेटा चाह रहे, तो आपका अन्य अभिनिवेश देख करके, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य अभिनिवेश देख करके, मैं भी पुत्रम एव ददऊ, मैं भी पुत्र ही दिया। वो चक्रवर्ती ये चित्रकेतु कह सकते थे कि ठीक है पुत्र दिए, पुत्र भी दे दिए होते, ज्ञान भी दिए होते, दोनों दे दिए होते, तो वो तो नहीं, आप ज्ञान लेते ही नहीं। इसलिए पुत्रम एव कह रहे, पुत्रम एव ददऊ अहम, मैं पुत्र ही दिया, दूसरा चीज लेने की आपको कोई शक्ति ही नहीं थी, सुनते ही नहीं। यदि ज्ञान का उपदेश करने लगते तो ये कहने लगते, हाय रे बेटा तुम नहीं होगे तो हम नरक में गिर जाएंगे, ये करेंगे। तो श्रोता की योग्यता होनी चाहिए। ज्ञान दुर्लभ नहीं है, वास्तव में लेने वाला आदमी बहुत दुर्लभ है संसार में। एक महात्मा एक बार कह रहे थे कि एक व्यक्ति ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनका ज्ञान दूध के रूप में था। विनोद कर रहे थे, उनके पास जो ज्ञान था वो दूध के रूप में था, तरल था। तो जो आता था वो बिना पात्र के आता था। तो हमको दूध चाहिए, हमको दूध चाहिए, हमको दूध चाहिए, बहुत दुर्लभ है दूध, ज्ञान ज्ञान दूध। तो महात्मा कहते थे भाई लो हम तो दे रहे हैं। तो कोई अपना पॉकेट फैलाता था, कोई अपना पतला झोला ले जाता था। तो कहते इसमें वो दे कैसे, लेने वाले को बुद्धि नहीं है कि इस झोले में दूध नहीं लेना चाहिए, और देने वाला यदि झोला में दे दे तो वो अभी तो बोका ही है ना, देखना चाहिए कहाँ ले रहा है, वो तो गिर जाएगा। तो अंगूरा जी देखे कि ये तो दूध लेने लायक है नहीं, तो उसके झोला में पत्थर डालकर चलेगा। तो करे क्या, क्योंकि वही वो चाहता था, वही चाहता था। लेने की योग्यता चाहिए, अभिनिवेश तोड़ना पड़ेगा। संसार में किसी न किसी चीज का अभिनिवेश व्यक्ति को बना रहता है। उस अभिनिवेश से मुक्त होकर के सीधा साधा बस केवल भगवान की कथा सुननी है, भजन करना है, ज्ञान लेना है, तो क्यों नहीं ज्ञान मिलेगा। अंगिरा जी जैसा समर्थ व्यक्ति भी दिवस तक उस समय ज्ञान का उपदेश नहीं कर सकता, और अब वही आकर कर रहे। तो अधुना पुत्रणाम तापो भवता भवतई वान भूयते। तो राजन, हाँ महाराज चित्र के तुमने कहा ठीक है, हे महामुने मैं तो अज्ञानी था, आप ज्ञानामृत लेकर के मुझे पोषने आए थे, आपको दया नहीं आई। जब मैं दुर्दशा में था, बुरी स्थिति में था, तो आपने और ऊपर से बेटा दे दिया। नहीं देते तो भी ठीक रहता, और ऊपर से पुत्र दे दिए, ज्ञान नहीं दिए, ऐसा क्यों किया आपने। मैं तो अज्ञानी था, पुत्र पुत्र कहकर रो रहा था, तो आप ऊपर से दे दिए पुत्र। तो कहते राजन बात यह थी कि आपको कुछ भी उपदेश नहीं करता, आप नहीं सुन सकते थे, आपको एक अनुभूति देने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए मैंने आपको ये बेटा दिया था। तो अधुना अब इस समय आपको पता चल गया ना कि पुत्र वालों को कितना कष्ट होता है। अधुना पुत्रीणाम ताप भवता एव अनुभूयते। अब आपको तो कोई सिखाना नहीं पड़ेगा ना कि पुत्र वालों को कितना दुख होता है। भवता एव, आप तो स्वयं ही आप अनुभव कर रहे हैं ना। हाँ हाँ एकदम 100% अनुभव हो गया, बस अनुभव हो गया, अनुभव हो गया। तब फिर कहते हैं अंगिरा जी, एवं दारा गृहा रायो विविध स्वर्ग संपदा शब्दा दयश्च विषया चला राज्य विभूत मही राज्यम बलम कोशो भृत्या मात्या सुहृदना। तो हे राजन, इसी एवं जैसे पुत्र दुख दिया आपको, नहीं जन्म लिया तो तब भी दुख दे रहा था, जन्म लिया तब भी दुख दिया, मर गया तब भी दुख दिया, इसी तरह से स्त्रियां घर धन विविध ऐश्वर्य शब्द आदि विषय राज विभूति पृथ्वी बल कोष नौकर चाकर सुहृद संबंध ये सब केवल दुख देने वाले हैं। इसी से समझ लीजिए आप, जैसे पुत्र आपको दुख दिया, ऐसे सब केवल दुख देने के लिए ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए, दुख ही देने के लिए बनाए गए। यह सत्य बात है। इस समय भले किसी को यह समझ में ना आवे कि ये क्या बात है, ये दुख देने वाले हैं कि सुख देने वाले हैं। अब कहा जाए कि कोई स्त्री दुख देने के लिए बनाई गई है, तो कोई नहीं मान सकता है इस संसार में। बल्कि व्यक्ति ये समझता है कि हमारे सुख का साधन है, घर बहारती है, खाना पकाती है, कपड़ा साफ करती है, एक फ्री नौकर मिल गई है। ये दुख क्या दे रही है। लेकिन यदि एकदम मूल में जाइए तो सब मिला करके केवल दुख ही देने के लिए सब बनाए गए हैं जीव को। और इसी तरह से गृह घर राय, राय का अर्थ होता है धन, विधेश्वर संपदा और कोई पद, शब्द आदि विषय सुनना खाना पीना चखना स्पर्श करना राज विभूति पृथ्वी राज बल कोष, बल मतलब सेना, सेना और कोष बैंक भृत्या मात्या सुहृद जना सर्वेपि सूरसेने में शोक मोह भयार्तिदा। हे सूरसेन, हे सूरसेन प्रदेश के राजा, ये सर्वे अपि, इसमें से एक भी कम नहीं है दुख देने में, ये सर्वे अपि शोक मोह भयार्तिदा, ये शोक मोह भय और दुख देने वाले हैं। ये सब एक मनुष्य के जीवन में इर्द गिर्द जो ईश्वर देता है तो उसमें ये सब चीजें होती हैं। कुछ न कुछ पैसा होता है, स्त्री होती है, बच्चे होते हैं, सुहृद होते हैं, अपने सलाहकार होते हैं, मंत्री न हो लेकिन एक आध घंटा घूमने वाले मंत्री तो गली गली में मिल जाते हैं, अपने मित्र, चाहे कुछ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो जो भी है ये सर्वे अपि इमे शोक मोह भय आर्तिदा, शोक देने वाले, मोह देने वाले, भय देने वाले और आरती देने वाले, इन सबके कारण शोक होता है। शोक मोह और भय, शोक होता है बीते हुए समय के लिए, कोई चीज हमारे मन के विरुद्ध घटना हो जाती है तो उसकी याद कर करके जो दुख होता है उसको शोक कहा जाता है, ओ ये हो गया, वो हो गया। और भविष्य में कोई ऐसा न हो जाए मन के विपरीत, उसके कारण जो दुख होता है उसको भय कहते हैं, आगे ऐसा न हो जाए, अब तक तो काम धंधा ठीक से चल रहा है, हाय रे भगवान आगे कुछ ऐसा गड़बड़ न हो जाए, अभी से भय बना रहता है मन। किसी को ट्रेन पर विदा कीजिए, भय बना रहता है कहीं ट्रेन दुर्घटना न हो जाए, तो आदमी कहता है कि जा करके रिंग कर देना, फोन कर देना कि ठीक से पहुंच गया, तो भय लगा रहा। और वर्तमान में मोह, मोह का अर्थ ये मेरा है, ये मैं हूं, यह हवा, ये इसको मोह कहते। और आरतीदा, और शरीर में जो कष्ट होता है इसके चलते, इनके पालन पोषण चलाने में, संतुष्ट रखने में ये जो कष्ट होता है इसको आरती कहते। और ये सब गंधर्व नखर नगर प्रख्या, ये है वास्तव में अनित्य, गंधर्व नगर की तरह, जैसे गंधर्व नगर आकाश में एकाएक प्रकट होता है और विलीन हो जाता है, इस तरह से आते हैं, रहते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं, राज्य भी चला जाता है, स्त्री भी चली जाती है, पुत्र भी चले जाते हैं, जीव को अकेले एक दिन जाना पड़ता है। कितना भी साम्राज्य जुटा ले आदमी, कितना भी अच्छा ऑफिस बनावे, कुछ भी करे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चलावे, लेकिन अंत में खाली हाथ। अब उस समय ये नहीं कहा जा सकता है कंपनी के मालिक थे इसलिए इनके कफन में 2-4 करोड़ रुपया बांध करके दे दो ले जाए, कुछ भी बनाइए बस, या तो वे छूट जाएंगे यहीं पर अथवा जीते जी छोड़कर चले जाएंगे, दोनों में एक होगा। या तो आदमी धन छोड़ करके मरता है, चाहे उसके जीवन में ही धन दूसरे लोग छीन लेते हैं, चला जाए। धन का वियोग तो अवश्यम भावी है, धन तो जाएगा ही, कितने लोगों का जीवन जीवन में ही जीवित रहते हुए ही धन चला जाए, और कुछ लोगों का धन पड़ा रहता है मरकर चले जाते हैं। तो चाहे मरकर चले जाए चाहे जीवित ही कोई छीन ले, दोनों तो एक ही हुआ ना। कुछ कहेंगे कि नहीं नहीं मरने के बाद छूटे तो कुछ खाएंगे पिएंगे, लेकिन कुछ लोग तो धन गड़ा हुआ छोड़कर चले जाते हैं, बैंकों में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो पहले से ही कोई अगर छीन लेता तो क्या अंतर है उसमें बताइए, अगर वैसे भी नहीं भोगे और वैसे भी नहीं भोगे, तो दोनों तो एक ही है। धन का वियोग अवश्य होगा, स्त्री आदि का भी वियोग होगा, ये होता ही है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही दिन मरेंगे, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही मिनट पर, एक ही बेड पर, नहीं, अलग अलग जाना ही है। तो कुछ काल तक तो वियोग सहना ही पड़ता है, चाहे पत्नी पहले जाए चाहे पति पहले जाए, वियोग तो निश्चित है। और बच्चे लड़के आदि तो शुरू से ही दुख के कारण होते हैं, तो सेवा वा करते नहीं है ठीक से। और राज्य आदि भी हमेशा चिंता बनी रहती है, ऐसे संभालना है, ये करना है, इस सेना को ऐसे रखना है, उसको संतुष्ट रखो, इसको करो, ये करो, वो भी दुख देने के लिए ही होता है। इसलिए राजा लोग राजपाट छोड़ करके चले जाते थे वन में और भगवान का भजन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तभी तो बहुत बहुत उपदेश बाकी है। ये स्वप्न माया मनोरथा, ये पुत्र स्त्री धन वैभव ये कैसे हैं? स्वप्न के समान अनित्य हैं, माया की तरह मिथ्या हैं और मनोरथ की तरह मन में केवल सुखद प्रतीत होते हैं। स्वप्न में जैसे हम लोग बहुत सी चीजें देखते हैं, कोई ये देखता है कि मैं इतना धन कमा लिया हूं, कोई ये देखता है कि मैं बहुत बड़े पद पर हो गया हूं, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई यह भी देखता होगा जिसका विवाह नहीं हुआ है वो देखता होगा कि मेरा विवाह हो गया है सपने में, लेकिन जगने के बाद सब खत्म हो जाता। तो जैसे सपना अस्थाई नहीं है, अनित्य है और झूठा है, इस तरह से परिवार आदि वास्तव में सब झूठा है। हे राजन, इसको समझो, इस स्वप्न की तरह है और माया की तरह है। या माया का अर्थ है इंद्रजाल, जादू। जादूगर दिखाता है कई चीजें, कई सामान, पैसा भी, सोना भी, कई तरह के, लेकिन एक क्वाइन का भी उपयोग किसी चीज को खरीदने में नहीं हो सकता। हमने देखा है कितना जादूगर पैसा बना देता है, 5-5 किलो चांदी का सिक्का से बना देता, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें से वो एक को भी लेकर के बाजार में जाकर कुछ काम आएगा। यदि ऐसा समर्थ था तो गली गली में भीख क्यों मांगकर चलता। ऐसे जादूगर है तो जादू से पैसा बना बना करके कितना खरीद सकता है, कुछ काम में नहीं आता, देखने के लिए केवल होता है। उसी तरह से किसी मनुष्य के जीवन में परिवार, स्त्री, पुत्र देखने के लिए हैं, इनसे कभी सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा जरूर। शोक मोह भय आरती दा, शोक मोह भय आरती मिलेगी लेकिन सुख नहीं मिल सकता। कल देखने के लिए है, जैसे जादू का पैसा देखने भर के लिए होता है। और मनोरथ है, मन में चिंतन भर करते रहते हैं, फिर चिंतन हट जाता है तो वही हट जाते हैं। इस तरह जैसे मन में मनोरथ उठते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जादू का धन देखने में लगता है नष्ट हो जाता है, सपने में दृश्य आता है नष्ट हो जाता है, वैसे ही ये सभी नष्ट हो जाते। तब दिखते कैसे हैं? अगर ऐसे है तो दिखते कैसे? दृश्य माना बिनार्थ है ना, न दृश्यन्ते मनोभाव। ये बिना तात्विक स्थिति के ही दिखते हैं, लेकिन वास्तव में है मनोभाव, मन में उठे हुए हैं। मन में ऐसी भावना होती है कि सुखद है, ये है, वो है, तो फिर प्रश्न उठता है कि इन कर्मों के कारण स्वर्ग मिलता है, ये मिलता है, कैसे लिखा गया है? हाँ, तो कर्म भी तो मन से होता है ना। मन में मानते हैं कि यह कर्म करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये करेंगे। मन जिस बात को पसंद करता है उस कर्म को करते हैं, तो अंत में ये मन पर ही केवल असर है कि हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए सुखद है, हमारे लिए ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन यह केवल दुख के लिए बनाया गया है। और भगवान ने ये ममता की तो बात छोड़ दीजिए, अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्म देहिनो विविधक क्लेश संतापक कृत उदाहरण। ये पुत्र, पत्नी, स्वजन, राज्य, धन, कोष, घर, ये तो दुख के लिए बनाए ही गए। ये आत्मा का जो देह है, देहिनो अयम देह, ये जो देह है जो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीनों को मिलाकर के बना हुआ है, यह अभी देहिना विविधक क्लेश संताप कृत उदाहरण। ये आत्मा को अनेक प्रकार का क्लेश और संताप देने के लिए बनाया गया है। ये देह भी ममता वाली वस्तुएं तो दुख देंगी ही, ये अहंतास्पद देह भी केवल दुख देने के लिए बनाया गया है। ईश्वर की व्यवस्था है ये दुख देने के लिए। ये देह भी दुख देता है, विविध क्लेश, विविध संताप कृत उदाहरण। उदाहरण का अर्थ ऐसा कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेज कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, सारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को दुख देने के लिए देह दिया गया है, और देह के संबंधी वस्तुएं और लोग सब दुख देने के लिए होते हैं। इसलिए स्वस्थ मन से आत्मा के स्वरूप पर विचार करो कि मैं कौन हूं, और देह आत्मा के अतिरिक्त देह आदि में और संबंधियों में विश्रम्भन त्यज, विश्वास छोड़ो। ये विश्वास छोड़ दो कि इन सबसे सुख मिलेगा, शांत हो जाओ और भगवान का भजन करो। तो बेचारा शांत नहीं हो रहा था, ज्ञान तो हो गया, लेकिन तब नारद जी कहते सुनो, एक मंत्रोपनिषद बता रहा हूं, इस मंत्र को जब तुम जपोगे तब अंगिरा जी की बातों को तुम खूब अच्छा से समझ जाओगे, मन शांत हो जाएगा। यह विधि है जो शास्त्रों की विधि है, वही वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित किया। कहीं भी कुछ करना हो तो सबसे पहले मंत्र जपना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एतम मंत्रोपनिषदम प्रतीक्षा प्रयतो मम। मैं आपको एक उपनिषद का मंत्र दे रहा हूं, इसको आप अगर 7 दिन जपेंगे तो आपको संकर्षण भगवान का दर्शन होगा, केवल 7 दिन जपने से। वास्तव में भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, यदि इसे ठीक ढंग से प्रेम से जपा जाए तो इसके प्रभाव का तत्काल अनुभव होता है। और कितना भी ज्ञान दिया जाए, जब तक मंत्र जप नहीं करेंगे तो वह ज्ञान अस्थिर नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि अंगिरा जी समझा रहे थे तो नारद जी बीच में कहते हैं, देखिए इसके बाद अंगिरा वाचक के बाद सीधा नारद वाचक, नारद जी ने रोका अंगिरा जी को लगता है, और रोक करके उन्होंने कहा, अंगिरा जी चुप हो गए थे, शायद वे नारद जी को इशारा किए होंगे कि आप कुछ समझाइए और मैं कितना कहूं। तब उन्होंने कहा कि ये उपनिषद का मंत्र है, इसको आप जपिए, वास्तव में महामंत्र ही है, या भाव देखेंगे तो महामंत्र जैसा ही है। वैष्णव में परंपरा है कि मन को शांत करने के लिए, भगवान में प्रेम उत्पन्न करने के लिए महामंत्र का जप करना चाहिए। कथा के पहले भी भगवान का कीर्तन किया जाता है, उसका यही सिद्धांत है। कथा में हो सकता है कि कई बातें समझ में न आवे, या कुछ लोग तो बहुत बातें नहीं समझ पाते हैं, तो कम से कम कीर्तन तो सुनेंगे ना, और लास्ट में भी कीर्तन गाया जाता है। मंत्र जप बहुत जरूरी है। तो नारद जी ने कहा कि उपनिषद का मंत्र मैं बता रहा हूं, इसको आप जब जपेंगे तो आप अंग्रेजी की बातों को आप पचा सकेंगे ठीक से। भगवान का नाम जपने से ही मन तत्वों को पकड़ पाता है, और करें यम धारयन सप्तरात्रान द्रष्टा संकर्षणं प्रभु। यदि आप 7 दिन इसको जपेंगे सप्तरात्रान, तो सप्तरात्रान का मतलब है रात और दिन दोनों, केवल रात भर नहीं। जैसे नवरात्र होता है तो उसका मतलब 9 दिन और 9 रात, ऐसा नहीं केवल रात रात भर। तो ऐसे सप्तरात्र का मतलब है 7 दिन सप्ताह। यदि एक सप्ताह महामंत्र का जप करेंगे बिना खाए पिए तो आपको संकर्षण भगवान का दर्शन हो जाएगा, यह उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने मंत्र दिया, और तब ये कथा आएगी कि नारद जी ने और ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, अभी मंत्र दे नहीं रहे हैं, देंगे बाद में, लेकिन और ज्ञान दृढ़ हो जाए इसके लिए नारद जी ने मरे हुए बच्चे को जिला दिया। और नारद जी ऐसे कहते हैं, बेटा उठो, अपने पिता का दिया हुआ राज्य भोगो, अभी जाने की क्या जरूरत है। तो उठा बच्चा, कहता है ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता थे, एक बार बेटा बन गए हूं तो कहते हैं कि बेटा है बेटा, ये लोग 10-10 बार मेरा बेटा बने हुए। अच्छा, तो जो बाकी ज्ञान था सब हो गया। तो कल चित्रकेतु महाराज के पुत्र का प्रवचन होगा, आप लोग सुने। वास्तव में तो नारद जी करा रहे थे, उन्होंने शक्ति दे करके उसको जीवित कर दिया, और छोटा सा बच्चा तत्व का उपदेश करने लगा। कल पूरी कथा में यही बात आएगी कि चित्रकेतु का पुत्र चित्रकेतु को उपदेश कर रहा है, बहुत सुंदर उपदेश है। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। कुछ लोगों ने कहा था कि आधा घंटा कथा बढ़ाइएगा, इसलिए मैं बढ़ाया, ऐसे में अनजान में नहीं बढ़ाया। प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वास वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 24 से चल कर रहे हैं। दृश्यमाना विनार्थेना न दृश्यन्ते मनोभवः कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन् अयं हि देहिनो देहो द्रव्यो ज्ञानक्रियात्मनः। संताप कृदाहृतः तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भां त्यजोपशममाविश। नारद उवाच एता मन्त्रोपनिषदां प्रतीक्षा प्रयतो मम यां धारयन् सप्तरात्रान् द्रष्टा संकर्षणं प्रभुं यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे। सर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य सद्यास्तदीयमतुलानधिकं महात्वम् प्रापुर्भवानपि परं न चिरादुपयेति। श्री नारद जी और अंगिराज महाराज चित्रकेतु को उपदेश कर रहे हैं, तो इस श्लोक में वे कह रहे हैं कि इस प्राकृत जगत में बिना वास्तविक सत्ता के वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, कभी कभी नहीं भी दिखाई पड़ती हैं। दृश्यमान बिना अर्थ न न दृश्यन्ते मनोभव। कभी कभी कोई वस्तुएं सत्ता में आते जैसे दिखती हैं कि यह वास्तव में वस्तु है, परंतु बिना अर्थे न बिना तात्विक सत्ता के स्थिति के वास्तविकता के ही वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि सब मनोभवा मन में उत्पन्न हुई है। थोड़ा कम करो। मनोभवा मनोमात्र विजृंभिता। वस्तुएं हैं संसार में, भगवान की सृष्टि है तो भगवान की माया द्वारा वस्तुएं हैं, परंतु इन वस्तुओं के विषय में जीवों का जो दृष्टिकोण है वो भिन्न भिन्न है। मनोभव है वास्तव में, जैसे कोई किसी को अपना संबंधी मानता है या किसी को प्रिय मानता है, किसी वस्तु को अपने लिए बहुत उपयोगी मानता है और किसी को अपना शत्रु मानता है, किसी वस्तु को अपने लिए बिल्कुल हानिकारक मानता है, तो देखा जाता है कि ये सब मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उसके अनुसार व्यक्ति प्रभावित होता रहता है। तो कभी कभी मन में बिना वास्तविक सत्ता के ही दृश्यमाना दिखाई पड़ते हैं। जैसे इसके पहले कहा गया था कि वास्तव में पंच महाभूत ही एक आकार में हो जाते हैं और आत्मा उसमें बैठ जाता है, तो उसको देह कहना चालू करते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि जो हम लोग इस संसार में संबंध मानते हैं या किसी वस्तु के ऊपर देयता या हेयता मान लेते हैं, यह सब मनोमात्र है। मन में ऐसा मान लिए, कभी कभी वही वस्तु एक दूसरे रूप में दिखाई देती है और कभी कभी दूसरे रूप में दिखाई देती है। इस संसार में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से किसी का प्रेम है, दृष्टि भिन्न है, तो कुछ देर तक कुछ काल के लिए वह व्यक्ति उसे बहुत प्रिय लगता है, लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ ही वर्षों के बाद या कुछ ही दिनों के बाद वह व्यक्ति सबसे बड़े शत्रु के रूप में दिखाई देने लगता है। तो दृश्य माना, पहले वो दूसरे रूप में दिखाई दे रहा था, इसके बाद और भिन्न रूप में दिखाई देने लगा। तो वास्तव में मन ने ऐसा मान लिया था, वास्तविक सत्ता नहीं है कि कोई यहां प्रिय है या द्वेषी है। मनुष्यों का मन अनेक प्रकार का ध्यान करता रहता है, चिंतन करता रहता है, और ध्यान के अनुसार, चिंतन के अनुसार फिर उसकी इंद्रियों में कर्म की प्रेरणा आती है उन भोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो इसलिए जो कर्म करता है और उसे सुख दुख मिलता है या स्वर्ग नरक आदि जो मिल रहा है, वह भी मन के कारण ही हो रहा है। और यहां तक तो ममता की वस्तुओं का वर्णन किए, अब कहते हैं कि यह है जो सुख दुख है जीव को, इन सब का कारण अपना यह देह है, और ममतास्पद वस्तुएं दुख देती हैं, इसमें क्या संदेह है। अहंतास्पद यह शरीर भी सबके दुख का कारण है। देहन अयम देह, देही का, आत्मा का जो यह देह है, यह तीन तरह से बना है, तीन प्रकार, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, द्रव्य का अर्थ है पंच महाभूत, नख से लेकर सिख तक इस शरीर में पांच पदार्थ हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसको तो द्रव्य कहते हैं। और ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान इंद्रिया, और कर्म का अर्थ है, क्रिया का अर्थ है कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया। इस शरीर में जड़ पदार्थ हैं पांच, और इसके साथ है, इसमें कुछ चेतना है और कुछ क्रिया है। ठीक, कुर्सी दे दीजिए कभी। तो द्रव्य, ज्ञान, क्रियात्मक, यह शरीर तीन वस्तुओं का संघात है। पांच द्रव्य हैं जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं, और कुछ अनुभव करने के लिए इस शरीर में इंद्रियां हैं जिन्हें ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, और कुछ क्रियाएं जीव करता रहता है, खाना पीना, चलना बोलना, देखना सूंघना, देखना तो ज्ञान इंद्रिय में आ जाएगा, तो हाथ से काम करना, पैर से चलना, वाणी से बोलना, और फिर उत्सर्ग, मलमूत्र आदि त्यागना, ये सब कर्म है, क्रियाएं। तो द्रव्य, ज्ञान और क्रियात्मक यह देह है, इसको शास्त्र और सभी साधु ये कहते हैं कि यह देहिना, देहधारी जीव को विविध क्लेश संताप कृत, प्राणी को विविध क्लेश देने के लिए यह देह दिया जाता है। क्योंकि देही जो है, आत्मा जो है, वह चिन्मय है, दिव्य है, तो उसको तो कोई प्राकृतिक पदार्थ टच कर ही नहीं सकता है, ऐसे उसको दुख नहीं दिया जा सकता है, वह बिल्कुल परे है। परंतु जब जड़ शरीर को, मैटर को वह मैं मान लेता है, तब उसको दुख दिया जा सकता है, वो अनुभव करने लगता है कि मुझे दुख हो रहा है, शरीर में अहम बुद्धि कर लेता है, इसलिए उसे देही कहते हैं। देह में जो अहम बुद्धि किया है उसको देही कहते हैं, देह वाला, और मानता है कि मैं ही देह हूं। जब ठंडा लगता है तो उसका अनुभव करता है, या गर्म लगता है तो अनुभव करता है, हीट का अनुभव करता है, अन्यथा भगवान तो कहते हैं कि नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक। यदि आत्मा को पूरा आग में रख दिया जाए कोटि वर्ष तक, फिर भी उसमें कोई आंच नहीं लगेगी, पर उसको उसके कर्मों के अनुसार सुख दुख